ये आकाशवाणी है। अब आप नवीन सक्सेना से समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नागरिक विमानन के बारे में आयोजित दूसरे एशिया प्रशांत मंत्री स्तरीय सम्मेलन में भाग लेने के लिए नई दिल्ली के भारत मंडपम में पहुंच गए हैं। प्रधानमंत्री ने सदस्य देशों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। नागरिक विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने कल सम्मेलन का उद्घाटन किया था। श्री नायडू को एशिया प्रशांत मंत्री स्तरीय सम्मेलन का अध्यक्ष चुना गया है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने कहा है कि भारत जैव प्रौद्योगिकी आधारित जैविक क्रांति के युग की ओर अग्रसर है। वो आज नई दिल्ली में भारत मंडपम में वैश्विक जैविक भारत 2024 को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जिस तरह एक समय में पश्चिमी देशों पर सूचना प्रौद्योगिकी क्रांति का प्रभाव था, उसी तरह आज भारत को भी जैविक क्रांति से गुजरना पड़ रहा है। वैश्विक जैविक भारत 2024 के बारे में विचार व्यक्त करते हुए डॉ सिंह ने कहा कि विभिन्न मंत्रालयों, राज्य सरकारों, नए कामकाज शुरू करने वाली संस्थाओं, अनुसंधानकर्ताओं, जैविक समूहों, निवेशकर्ताओं, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं, नीति निर्धारकों के लिए ये एक मंच की भूमिका निभाएगा। वैश्विक जैविक भारत 2024 के अवसर पर 30 से अधिक देशों ने 500 से अधिक प्रदर्शनियां लगाई हैं। उन्होंने आशा व्यक्त की कि इससे नवाचार, विचारों और भागीदारी को बढ़ावा मिलेगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज जोधपुर में वायुसेना के अब तक के सबसे बड़े बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास तरंग शक्ति के दूसरे चरण के दौरान हेलीकॉप्टरों प्रचंड, सारंग, सूर्य किरण और लड़ाकू विमान तेजस के करतब देखे। श्री सिंह ने इस अवसर पर कहा कि इस अभ्यास का उद्देश्य देश की सैन्य क्षमता का प्रदर्शन करना तथा प्रतिभागी देशों के बीच सहयोग को मजबूत बनाना है। उन्होंने कहा कि तरंग शक्ति मित्र देशों के बीच सहयोग तथा परस्पर विश्वास बढ़ाने का माध्यम है। रक्षा मंत्री ने देश की बढ़ती सैन्य ताकत का उल्लेख करते हुए कहा कि पहले भारत रक्षा उपकरणों का आयात करता था, लेकिन अब 90 देशों को रक्षा उत्पादों का निर्यात किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि देश अपनी जरूरत के अनुसार रक्षा उपकरणों का विनिर्माण कर रहा है और मित्र देशों के साथ उच्च प्रौद्योगिकी के उत्पाद बनाने के सहयोग में भी शामिल है। हरियाणा में विधानसभा चुनावों के लिए नामांकन दाखिल करने का आज अंतिम दिन है। नामांकन पत्रों की जांच कल होगी और 16 सितंबर तक नाम वापस लिए जा सकते हैं। 90 सदस्यीय हरियाणा विधानसभा के लिए मतदान 5 अक्टूबर को होगा, मतगणना 8 अक्टूबर को होगी। आम आदमी पार्टी ने आज हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए अपनी छठी सूची की घोषणा की। इस सूची में 19 उम्मीदवार शामिल हैं। उधर जम्मू कश्मीर में भी विधानसभा चुनाव के तीसरे और अंतिम चरण के लिए नामांकन दाखिल करने का आज अंतिम दिन है। इस चरण में 1 अक्टूबर को 40 विधानसभा सीटों पर मतदान होगा। नामांकन पत्रों की जांच कल की जाएगी और 17 सितंबर तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। जम्मू कश्मीर में पहले चरण में 18 सितंबर को और दूसरे चरण में 25 सितंबर को मतदान होगा। पद्म पुरस्कार 2025 के लिए इस महीने की 15 तारीख तक नाम भेजे जा सकते हैं। पद्म पुरस्कारों की घोषणा अगले वर्ष गणतंत्र दिवस पर की जाएगी। पद्म पुरस्कारों के लिए नामांकन प्रक्रिया इस वर्ष 1 मई को शुरू हुई थी। नामांकन केवल राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल पर ऑनलाइन स्वीकार किए जाएंगे। नामांकन में सभी प्रासंगिक विवरण शामिल होने चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पेरिस पैरालंपिक से लौटे भारतीय दल से अपने आवास पर मुलाकात की। श्री मोदी ने खिलाड़ियों के शानदार प्रदर्शन के लिए पदक विजेताओं और प्रतिभागियों को बधाई दी। प्रधानमंत्री ने कपिल परमार के पदक पर हस्ताक्षर किए। कपिल परमार ने पैरा जूडो पुरुषों की 61 किलोग्राम जीवन श्रेणी में कांस्य पदक जीता था। चीन के ओलनबियोर में एशियाई हॉकी चैंपियनशिप हॉकी ट्रॉफी टूर्नामेंट में मौजूदा चैंपियन भारत ने दक्षिण कोरिया को 3-1 से हरा दिया है। टूर्नामेंट में भारत की यह लगातार चौथी जीत है। भारत पहले ही सेमीफाइनल में पहुंच चुका है। सेमीफाइनल में पहले मुकाबले में 16 सितंबर और फाइनल 17 सितंबर को खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।